Thank you. चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की श्रीमद भागवतम प्रातः कालीन कक्षा की युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की भाई गौर प्रेमानंद श्रीमद भागवतम नवमः स्कन्धः दशमोऽध्यायः नवमे स्कन्ध का दसवां अध्याय है। श्लोक संख्या द्वाविंशतितम 22वां श्लोक। शीर्षक है परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं।
Yeah.
त्यक्तात् तपस्या फलमद्य चुपक्षितस्य यक्षानि बाह्यमुपलभ्यवीर्यः माता शब्दार्थ रामः भगवान रामचंद्र ने तम उससे रावण से आह कहा पुरुष अद पुरीष तुम मनुष्यों के भक्षकों राक्षसों के मल हो यत क्योंकि नह मेरी कांता पत्नी असमक्षम मेरी अनुपस्थिति के कारण असहाय असता महान पापी तुम्हारे द्वारा अपहृता अपहरण की गई श्ववत कुत्ते के समान जो मालिक की अनुपस्थिति में रसोई से भोजन लेकर भाग जाता है ते तुम्हारा त्यक्त तपस्या निर्लज्ज फलम अद्य आज तुमको मजा चखा दूंगा जुगुप्सितस्य अत्यंत नीच का यक्षामि तुम्हें दंड दूंगा काल इव मृत्यु के समान कर्तुः सारे पापों के कर्ता तुमको अलंघ्य वीर्यः किंतु मैं सर्वशक्तिमान होने के कारण कभी अपने प्रयास में विफल नहीं होता अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा तुम मानव भक्षियों में अत्यंत गर्भित हो निस्संदेह तुम उनकी विष्ठातुल्य हो तुम कुत्ते के समान हो क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा तुम अत्यंत नीच पापी तथा निर्लज्ज हो अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता तात्पर्य न च दैवात् परम बलम कोई भावी बल दिव्य शक्ति से पार नहीं पा सकता रावण इतना पापी तथा निर्लज्ज था कि उसे इसका पता ही नहीं था कि रामचंद्र की हलादिनी शक्ति माता सीता का अपहरण करने का क्या फल होगा यही राक्षसों का अवगुण है असत्यम अप्रदिष्ठम तय जगदाहुरनेश्वरम राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान सृष्टि के शासक हैं वे सोचते हैं कि इस सब कुछ संयोगवश उत्पन्न हुआ है और उसका न तो कोई शासक है या राजा है न नियंता इसीलिए वे स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से कर्म करते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि लक्ष्मी जी तक का अपहरण कर बैठते हैं रावण की यह नीति किसी भी भौतिकवादी के लिए अत्यंत घातक है निस्संदेह इससे भौतिकवादी इससे भौतिकतावादी सभ्यता का विनाश होता है तो भी नास्तिक लोग राक्षस है अतएव वे घृणित से घृणित कर्म करते हैं जिसके लिए वे अवश्य दंडित होते हैं धर्म भगवान के आदेशों से युक्त है अतएव जो भी इन आदेशों का पालन करता है वही धर्मी है जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता वह अधर्मी है और उसे दंडित होना पड़ता है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोवीक्षणं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सर्वप्रथम भगवान श्रीष्ठवर राधा गोविंद देव के अतिशय करार्जित पाद पद्मों में तत्परिकर श्री ललिता देवी श्री विशाखा देवी प्रभृति अष्ट सखी वर्ग एवं श्री रूप मंजरी श्री रति मंजरी प्रभृति पाल्यदासी गण समेत कोटि कोटि वार काकुतिमयी एवं दैन्यतामयी प्रणतियों को संपन्न करने के साहचर्य रूपी कार्य में कलयुग की प्रथम संध्या में स्वकीय अपार अहैतुकी महाकरुणा वरुणालयता के फल स्वरूप किंवा परिणाम स्वरूप यह अवनी तल पर जगती तल पर भूमि तल पर मेघिनी पर वसुंधरा पर पृथ्वी लोक पर भूतल पर श्री कृष्ण नाम एवं कृष्ण प्रेम मय उन्नत उज्ज्वल रस के मुक्त हस्त पात्रापात्र विचार रहित प्रदाता श्रीमद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री शची सूनु के रूप में श्री धामनव द्वीप में प्रकट हुए हैं उनको उनके परिकर श्री धाम वृंदावन स्थित श्री रूप सनातन प्रभृति गोस्वामी पादों सहित कोटि कोटि बार वंदन करने के अनंतर उसी श्री कृष्ण भावना सुधारूपी मंदाकिनी के किंवा अलकनंदा के भागीरथी के अथच गंगा के प्रवाह का पुनः आधुनिक अर्वाचीन काल में सांप्रत वेला में विश्वव्यापी स्तरीय विस्तारित प्रवर्धन प्रचारण प्रसारण प्रभृति करने वाले जगत गुरु श्री प्रभुपाद के अतिशय सुललित पादाम्बुजद्वयों में नतमस्तक होते हुए एवं उपस्थित वैष्णव श्रोता समुदाय का भी यथा योग्य तारतम्यादि भेद से स्वागत करते हुए आज की इस अतिशया मंगलमयी पावना एवं शुभा प्रातःकालीन वेला में भगवान श्री काकुत्स्थ कुलभूषण राघवेंद्र के पावन चरित्रों के सुधालेश का पान करने के लिए यह पावन अग्रसर होता है। भगवान श्री रामचंद्र का जो चरित्र है सुधातुल्य अथवा निरुपम सुधा भी जिसके सामने फीकी पड़ जाए सुधा के साथ जिसकी उपमा देना भी जिसका अपमान है जिसकी अवहेलना है क्योंकि जिस समय परीक्षित और सुखदेव के मध्यस्थ श्रीमद् भागवत के संवाद का प्रारंभ हो रहा था उस समय इंद्र आदि प्रमुख देवता यह विचार करके मन में आए कि हम परीक्षित को जिस बात का डर है उस बात से उस संकट से उस पीड़ा से उस क्लेश से उस आरती से परीक्षित को मुक्त कर दें उसका मोचन कर लें अर्थात उसको तो तक्षक नाग के दंशन से प्राप्त होने वाली मृत्यु से भय है और हम उसे यह जो स्वर्ग की सुधा है जो कि सत्य युग में समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई है उसका पान करवा कर उसे तो अपने उस संकट से मुक्त कर दें और बदले में विनिमय में परीक्षित उस कथा का लाभ प्राप्त न करें और हम उस कथा के लाभ को प्राप्त करें। उस समय महाराज परीक्षित के समक्ष ही ब्रह्मराज श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन देवताओं का उपहास किया था कि को काज को मणि महान अर्थात भगवान की जो कथा है वो तो मणि के समान है उसको अमृत जो कांच के समान है उसकी तुलना उस कथा से कैसे की जा सकती है उसका विनिमय कैसे किया जा सकता है। तो भगवान राघवेंद्र की जो कथा है वह तो निरुपम है अनिर्वचनीय है निराख्यात है उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती और उन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र के जीवन का उनकी लीलाओं का उनकी दिव्य अप्राकृत चेष्टाओं का इस श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के दशम और एकादशम अध्याय में बड़े ही संक्षेप में श्री सुखदेव गोस्वामी श्री ब्रह्मराज श्री विष्णुदास परीक्षित के प्रति वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में सर्वप्रथम इस श्लोक के जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उनके ऊपर एक दृष्टि डाल लें और तत्पश्चात जो श्री राम तत्व है उसकी भी क्रमशः गांधी पूर्वक आलोचना की जाएगी। वर्तमान के श्लोक में भगवान श्री राघवेंद्र यह जो प्रसंग है ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का प्रसंग है। रामायण सप्त भागों में विभक्त है। सर्वप्रथम बालकांड बालकांडम, तत्पश्चात आता है अयोध्या कांडम, तत्पश्चात अरण्य कांडम, तत्पश्चात किष्किंधा कांडम, अनंतर सुंदर कांडम, अनंतर युद्ध कांडम जिसको रामचरितमानस में लंका कांड संज्ञा दी गई है, और अनंतर उत्तर कांडम। सप्त कांडों में वाल्मीकि रामायण विभक्त है। तो यह जो प्रसंग है इस श्लोक में इस प्रसंग का वर्णन है, यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का प्रसंग है। और भगवान राघवेंद्र अब बस रावण की वध करने की तैयारी नहीं है। रावण की जो मृत्यु है उसकी जो अंतिम वेला है उसका जो प्राणांत समय है उसका जो जीवनांत का काल है वह अत्यंत सन्निकट आ चुका है। अब बस कुछ क्षणों में उसके प्राणों का हरण होने ही वाला है। और विशेषता यह है कि जो इंद्र के सारथी हैं स्वर्ग में अमरावती पुरी में इंद्र के जो सारथी हैं कौन, श्री माद्री। श्री माद्री को इंद्रदेव ने प्रेषित किया है, भेजा है। इंद्र ने अपने रथ को स्वयं भगवान राघवेंद्र की सेवा में परिचर्या में लगाने के लिए और अपने सारथी को भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए भेजा है। तो माद्री दिव्य अश्वों से युक्त दिव्य हयों से जो है जो अश्व है जो घोड़े हैं और उच्चंगी श्रवा इत्यादि दिव्य घोड़ों से युक्त उस रथ को भेजा है लंका में। और भगवान राघवेंद्र माद्री की विनम्रमयी प्रार्थना से उस रथ पर सवार हो चुके हैं और अब बस उस निशाचर राक्षसराज जो विश्रवा का पुत्र रावण है उस रावण के अंत की अब प्रतीक्षा में। उस समय भगवान राघवेंद्र रावण को मर्माहत करने के लिए इस वचन का उपदेश करते हैं, इस वचन का इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, इस वाक्य का कथन करते हैं। क्योंकि जो युद्ध कला है युद्ध का भी एक शास्त्र है विग्रह युद्ध, जो संग्राम की कला है जो युद्ध की कला है, युद्ध की कला के अनुसार धनुर्वेद की जिसमें युद्ध कला का सम्यक प्रशिक्षण दिया गया है, समस्त प्रकार के जो व्यूह है व्यूहों की रचना कैसे की जाए, चक्र व्यूह षटक व्यूह इत्यादि समस्त प्रकार के व्यूहों की कैसे रचना की जाए, अस्त्र शस्त्रों का परिचालन किस प्रकार से किया जाए, युद्ध की कला को सिखाने वाला जो शास्त्र है धनुर्वेद, धनुर्वेद के अनुसार युद्ध दो प्रकार से किया जाता है। जो युद्ध की पूर्वावस्था है युद्ध दो प्रकार से होता है, एक शारीरिक स्तर पे होता है, एक वाचिक स्तर पे होता है, तीन प्रकार से मुख्य, और एक मानसिक स्तर पे होता है। तो सर्वप्रथम जो रिपु होता है जो दमन करने योग्य शत्रु होता है उस शत्रु को मानसिक रूप से दमाने का प्रयास किया जाता है, इट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल हंटिंग। क्योंकि उसका जो मानसिक संतुलन है वो पहले अस्त व्यस्त हो जाए विक्षिप्त हो जाए और तत्पश्चात उस पर वार किया जाए। ये नीति शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है कि शत्रु को सबसे पहले मानसिक रूप से चोट पहुंचाई जाए पीड़ा पहुंचाई जाए तत्पश्चात उस पर शारीरिक स्तर पर वार किया जाए। तो भगवान राघवेंद्र भी रावण के मनोबल को नष्ट करने के लिए मानसिक आक्रमण कर रहे हैं और मानसिक आक्रमण वाचिक आक्रमण के द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि जो वचन के बाण है, जो मर्मांतक वचन है। महाभारत में शांति पर्व है, जिस शांति पर्व में महाराज युधिष्ठिर को शरशय्या पर लेटे हुए एवं मकर संक्रांति तिथि के उदय होने की प्रतीक्षा में, अर्थात सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा में, जो गंगा पुत्र देवव्रत शांतनुनंदन भीष्म, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, वो उन अजात शत्रु सम्राट युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए शांति पर्व की जो हंस गीता और पांडव गीता नाम के जो दो आख्यान है उसमें कहते हैं कि जो वाक्य बाण है, जो वाक्य बाण है, वाक्य बाण साधारण बाणों से भी अधिक कोटि कोटि गुने अधिक पीड़ाकारी होते हैं, क्लेशकारी होते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी यहां पर सर्वप्रथम वाक्य बाणों का निक्षेप कर रहे हैं और तत्पश्चात जो दिव्यास्त्र है उसका प्रक्षेपण करेंगे रावण के मर्म की ओर, उसका जो हृदय स्थल है, वक्षा स्थल है उसकी ओर। तो यहां पर भगवान रामचंद्र वाक्य बाण के द्वारा उसके मानसिक संतुलन को नष्ट करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, रामस्तम आह। भगवान रामचंद्र ने कहा पुरुषाद पुरेश यन्नह। पुरुष का अर्थ यहां पर मनुष्य लिया गया है। समस्त जो टीकाकार है, समस्त जो भाष्यकार है श्रीमद् भागवत के, उन समस्त भाष्यकारों ने यहां पर पुरुष शब्द का अर्थ मनुष्य लिया है। पुरुषाद पुरुष यन्नह, पुरुष पुरुषान अदन्ति इति पुरुष अदाह। जो मनुष्यों का भक्षण करने वाले हो, अद धातु का अर्थ है भक्षण करना, अद भक्षणे। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अथवा जो पाणिनि व्याकरण है उसके अनुसार अद धातु भक्षणार्थ में आती है, खाने के अर्थ में आती है, अशन के अर्थ में आती है। तो अद भक्षणे, जो पुरुषों को मनुष्यों का भक्षण करके उनको अपने उदर में समाहित करने वाले हो, उन निशाचरों को जो निशाकालीन वेला में, जो रात्रिकालीन वेला में भ्रमण करते रहते हैं, उन निशाचरों को, उन राक्षसों को, उन मनुष्य भक्षियों को भी यहां पर पुरुष अदाहा, पुरुष अद कहा गया है, अर्थात मनुष्य भक्षी कहा गया है। और उन मनुष्य भक्षियों का जो मन है पुरुष, उनकी जो निष्ठा है, उनका जो मन निक्षेप है, उसके तुल्य हो हे रावण तुम। सर्वप्रथम रावण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, रावण शब्द का अर्थ क्या है, जो रुदन करवाए, रुदनम कारये इति रावणः, जो अन्यों को रुलाए, जो अन्यों को रुदन करवाए, अन्यों को क्लेश प्रदान करके, पीड़ा प्रदान करके, आरती प्रदान करके, महाभयंकर दुख के सागर में अन्य जीवों को निमज्जित करके उनको जो रुदन करवाए वही रावण है। यह रावण शब्द की व्युत्पत्ति। तो यहां पर रावण को पुरुष कहा गया है, अर्थात तुम राक्षस नहीं हो, तुम निशाचर नहीं हो, परंतु उन राक्षसों का जो मन है, उनकी जो निष्ठा है, वह हो पुरुष अद पुरुष। तो यहां पर जो मध्व संप्रदाय के टीकाकार हैं, भाष्यकार हैं, श्री विजय ध्वज तीर्थ स्वामी, उन्होंने अपनी पद रत्नावली टीका में कहा है कि अपकृष्टम पुरेशम स्यात् विष्ठ्य जिष्क्रम अप्युत। अर्थात एक तो साधारण मल होता है, साधारण मल को विष्ठा कहा गया है, परंतु वह विष्ठा, वह मल जब अनेक काल के पश्चात, अनेक घटिकाओं के पश्चात, अथवा अनेक निमेशों के पश्चात, अथवा अनेक दिनों के पश्चात सड़कर अधिक दुर्गंध युक्त हो जाए, पूति युक्त हो जाए, अपकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाए, मन अपनी जो निम्नतमा अवस्था है, अपनी जो सर्वाधिक जो नीची अवस्था है, उस सर्वाधिक नीची अवस्था को, निम्नतमा अवस्था को जब प्राप्त हो जाए उसको पुरुष कहते हैं। अपकृष्टम पुरुषम स्यात् विष्ठ्य जिष्क्रम अप्युत। अर्थात राक्षसों के द्वारा उनके गोदा द्वार के द्वारा प्रक्षिप्त जो नवीन मल है उसके समान तुम नहीं हो, परंतु उनका जो प्राचीन मल है कि जिसमें से इतनी दुर्गंध आ रही है कि जहां पर ये जो शुक्र है वह शुक्र भी जहां पर जाना नहीं चाहता, उसका भक्षण करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए, उसको निहारने के लिए, उसका दिग्दर्शन करने के लिए, वैसी निष्ठा हो तुम। ये यहां पर तात्पर्य है पुरुष अधपुरुष का। और तत्पश्चात कांता समक्षम असता पहिताश्ववत्ते, मेरी कांता का तुमने अपहरण किया है, तुम पुरुष अधपुरुष क्यों हो? तुम जो माल्यवान है, विभीषण है, इंद्रजीत है, मेघनाद है, अकंपन है, प्रहस्त है, अक्षय कुमार है, इत्यादि जो बहुत प्रकार के राक्षस हैं तुम्हारी लंकापुरी में, उन राक्षसों की विष्ठा तुल्य तुम क्यों हो? क्योंकि तुमने मेरी अनुपस्थिति में, असमक्षम, मेरी अनुपस्थिति में जब मैं तुम्हारे मित्रों के समक्ष नहीं था उस समय, असमक्षम, अक्ष का अर्थ होता है नेत्र और सम का अर्थ होता है सामने, और असमक्ष का अर्थ होता है जो नेत्रों के सामने नहीं हो, जब मैं तुम्हारे और मारीच के नेत्रों के सामने नहीं था उस समय तुमने मेरी कांता का अपहरण किया है, इसलिए तुम राक्षस जो कि मनुष्य भक्षी है उनकी अत्यंत गर्भित सड़ी हुई निष्ठा के तुल्य हो। कांता, यहां पर भगवान रामचंद्र श्री सीता देवी के लिए, जनक नंदिनी वैदेही के लिए कांता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कांता शब्द का अर्थ क्या है? कम धातु से ही कांता शब्द बनता है व्याकरण के अनुसार। कम धातु का अर्थ होता है कम इप्सित विषय, जो अभीष्ट विषय हो, जो इप्सित विषय हो, जो इच्छित विषय हो, जो अभिलाषित वांछित विषय हो, उसको यहां पर कांत कहते हैं। तो कांता का अर्थ है ऐसी स्त्री, ऐसी देवी, ऐसी रमणी जो कि किसी पुरुष के द्वारा इप्सित हो, अभिलाषित हो, वांछित हो, उसकी इष्ट हो। तो यहां पर भगवान राघवेंद्र श्री सीता देवी के लिए कांता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि श्री सीता भगवान राघवेंद्र की हलादिनी शक्ति है, लेकिन जो भौतिकतावादी नराधम राक्षस हैं वे इस रहस्य को नहीं जानते, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा। तो यहां पर प्रश्न हो सकता है कि भगवान श्री राघवेंद्र तो सच्चिदानंद घन मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब उनके अंतःकरण में, उनके स्वरूप में सत चित एवं आनंद तीनों ही विद्यमान है, जब उनके स्वरूप में सम्मित संधिनी एवं आह्लादिनी तीनों ही शक्तियां विद्यमान है, अंतर्निहित है, अंतः प्रविष्ट है उनके अंतःकरण में, उनके स्वरूप से जब पृथक नहीं है सत चित और आनंद के तीनों ही गुण, गुण गुणी अभेद है भगवान में, इस संसार में जो गुण होते हैं वह गुण को धारण करने वाला जो गुणी होता है उससे भिन्न होते हैं, इस संसार में जो धर्म होते हैं वह धर्म को धारण करने वाला जो धर्मी है उससे भिन्न होते हैं, इस संसार में यदि किसी व्यक्ति के पास सुंदरता है तो सुंदरता का जो गुण है वह उस व्यक्ति से पृथक है, क्यों? क्योंकि वह सुंदरता का गुण उस व्यक्ति की जरावस्था में, वृद्धावस्था में नष्ट हो जाता है, जबकि वह व्यक्ति उस वृद्धावस्था में भी जीवित रहता है। अतएव जितने भी गुण है इस संसार के वे उन गुणों को धारण करने वाले गुणियों से, धर्मियों से भिन्न है, लेकिन जो परब्रह्म परतत्व वस्तु है उस वस्तु के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता, अर्थात जो अप्राकृत चिन्मय वस्तु भगवान है, जो अधोक्षज वस्तु है, जो इंद्रियातीत है, अप्राकृत है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद वस्तु के संबंध में उस सच्चिदानंद वस्तु के जितने भी गुण है वो गुण स्वयं गुणी से अभिन्न है, वो धर्म स्वयं धर्मी से अभिन्न है, भगवान के जितने भी गुण है वो स्वयं उनके स्वरूप में स्थित है, वो स्वयं ही गुणों के रूप में प्रकाशित होते हैं, ये नहीं कि गुण अलग है और वो अलग है, स्वयं ही गुणों के रूप में प्रकाशित होता है, यही तो वैष्णव सिद्धांत है। तो यहां पर जो सत है, सत नाम का जो गुण है भगवान का, सत का अर्थ है नित्य अस्तित्व। भगवान का नित्य त्रैकालिक अस्तित्व है, भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक अस्तित्व है, आदि अंत रहित है भगवान, उत्पत्ति और विनाशशील नहीं है, त्रैकालिक सत्य है, इसीलिए उनको सत कहा गया। चित क्यों कहा गया? चित इसीलिए कहा गया क्योंकि भगवान संपूर्ण ज्ञानमय है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ क्यों है? क्योंकि सर्वव्यापी है। जो व्यक्ति प्रत्येक स्थान में स्थित हो उसी को समस्त ज्ञान हो सकता है। जो केवल एक देशवासी हो उसको अन्य देश का ज्ञान नहीं हो सकता। जो केवल एक स्थान में एक स्थल पर स्थित है उसको अन्य इतर जगह का इतर स्थल का ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञता भगवान की उनके सर्वव्यापित्व पर आधारित है। यदि सर्वव्यापी है तभी वो सर्वज्ञ हो सकते हैं, और सर्वज्ञ है, संपूर्ण ज्ञानवान है, इसीलिए उनको चित कहा गया। और तत्पश्चात आनंद, सत चित और आनंद, आनंदमय है भगवान। तो यदि उनके अंतःकरण में आनंद है, यदि उनके स्वरूप में आनंद है, तब फिर उनको आनंद की प्राप्ति पृथक रूप से करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, श्री सीता देवी तो भगवान श्री राघवेंद्र से पृथक रूप में अवतीर्ण है। भले ही श्री सीता देवी आह्लादिनी शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान राघवेंद्र का जो विग्रह है, उनका जो शरीर है, उससे पृथक रूप से प्रकट होती है। भगवान के शरीर से पृथक रूप में प्रकट होती है श्री सीता, जो कि उनकी आह्लादिनी शक्ति है। तो आह्लादिनी शक्ति भगवान के अंतःकरण में भी है और पृथक रूप से भी प्रकाशित होती है, एक ही समय उभय रूप से प्रकाशित होती है। भगवान के स्वरूप में भी स्थित है और बाहर भी पृथक रूप से सीता के रूप में स्थित है आह्लादिनी शक्ति। तो पृथक रूप से आह्लादिनी शक्ति को अपने आप को अवतीर्ण करने की, प्रकट करने की आवश्यकता क्या है? जबकि वह आह्लादिनी शक्ति पहले से ही भगवान के स्वरूप में स्थित है, तो उसको पृथक रूप से प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? इस शंका का समाधान केवल गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के पास है, अन्य किसी संप्रदाय आचार्यों के पास नहीं है। श्री जीव गोस्वामी पादरे भक्ति संदर्भ में, प्रीति संदर्भ में इसका विश्लेषण करते हुए कहा कि भगवान के अंतःकरण में भले ही सत है, चित है, आनंद है, संधिनी है, संवित है, आह्लादिनी तीनों है, लेकिन फिर भी आह्लादिनी पृथक रूप से इसीलिए प्रकट होती है क्योंकि पृथक रूप से प्रकट होने पर वह जिस प्रकार का आनंद भगवान को दे सकती है वह आह्लादिनी शक्ति, उस प्रकार का आनंद वह आह्लादिनी शक्ति भगवान के स्वरूप में स्थित होने पर, उनके अंतःकरण में स्थित होने पर उनको नहीं दे सकती। इसीलिए सीता को यहां पर कांता कहा गया, अर्थात जो भगवान रामचंद्र के द्वारा अभिलषित है, वांछित है, भगवान रामचंद्र जिसको चाहते हैं, इसीलिए सीता को यहां पर कांता कहा गया है। क्योंकि वह सीता यद्यपि उनके अंतःकरण में भी आह्लादिनी की शक्ति के रूप में स्थित है, लेकिन उस समय उनको इतना आनंद अतिरेक से निमज्जित नहीं कर पाती, जितने आनंद अतिरेक से, जितने आह्लाद अतिरेक से, जितने विनोद आमोद प्रमोद अतिरेक से, जितने सुखाति शयत्व से, वो इस समय पृथक रूप में अवतीर्ण होकर उनको निमज्जित कर पाती है। इसलिए भगवान रामचंद्र भी अधिक आनंद की प्राप्ति के लिए इस सीता देवी की चाहना करते हैं, उनकी वांछा, उनकी अभिलाषा करते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र के द्वारा कमनीय है सीता, इच्छित है, इप्सित है, अभिलषित है, इसलिए सीता को यहां पर कांता कहा गया। कांता असमक्षम असता अपहृता श्वभक्ते। तो तुमने मेरी कांता का अपहरण कैसे किया? जिस प्रकार से कोई कायर व्यक्ति, जिस प्रकार से कोई क्लीव व्यक्ति, कोई वीर्यहीन, कोई तेजहीन, कोई ओजहीन, कोई रेतहीन व्यक्ति, जिस प्रकार से कोई नपुंसक व्यक्ति, जिस प्रकार से कोई नपुंसक व्यक्ति, क्लीव व्यक्ति, जिसका समस्त पुरुषत्व नष्ट हो चुका है, अथवा जो भीरु है, जो कायर है, जो डरपोक है, जो साहसी नहीं है, जो वीर कहलाने के योग्य नहीं है, वह पुरुषाधम जिस प्रकार से किसी वस्तु का अपहरण कर लेता है अथवा किसी व्यक्ति को अनजाने में मार डालता है, उसी प्रकार से तुमने भी
तारकता का कार्य किया है, तुमने भी अपने नपुंसकत्व को अपने क्रीरत्व को भी प्रकट किया है। यदि तुमने वास्तव में पुरुषत्व होता तो तुम मेरे नेत्रों के समक्ष आकर मेरे से युद्ध करते, मुझे पराजित करके तत्पश्चात मेरी कामता का अपहरण करते। परंतु तुमने किस प्रकार से अपहरण किया है मेरी कांता का, तो इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्वभक्ते, जिस प्रकार से एक श्वान, जिस प्रकार से एक कुक्कुर, जब गृह का स्वामी गृह में नहीं होता है, जब जो गृह का स्वामी है वह पाकशाला में नहीं होता है, रसोई घर में जब अनुपस्थित होता है अथवा गृह से वह बाहर गया होता है, उस समय जो श्वान है, उस समय जो कुकुर है, उस समय जो कुत्ता है, ग्राम्य सिंह है, वह ग्राम्य सिंह जिस प्रकार से किसी के गृह में प्रवेश करके भक्ष्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का, पेय पदार्थों का, लोह्य लिप्य पदार्थों का और चुष्य पदार्थों का जिस प्रकार से अपहरण करता है, चौर्य संपादित करता है, तात्कर्य संपादित करता है, उसी प्रकार से तुमने भी कुकुर की भांति कार्य किया है। तुम सिंह शार्दूल कहलाने की योग्य नहीं हो, तुम राक्षस राज कहलाने की योग्य नहीं हो, परंतु तुम राक्षसों में भी कुकुर श्वान तुल्य कहलाने के योग्य हो। और इस प्रकार की जो गाली है, इस प्रकार की गाली, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंध में जब हिरण्याक्ष और वराह भगवान का प्रसंग आया है, उस समय भगवान वराह देव ने भी हिरण्याक्ष के प्रति कटाक्ष करते हुए और युद्ध के प्रारंभ में, युद्ध के प्रारंभ से पहले कटाक्ष करते हुए वराह देव ने हिरण्याक्ष को यही शब्द कहे हैं। क्या कहा है कि तुम ग्राम्य सिंह हो, ग्राम्य सिंह शब्द का वहां पर प्रयोग किया है। हे हिरण्याक्ष, तुम सिंह नहीं हो, तुम शार्दूल नहीं हो, तुम जो वन का राजा, समस्त मृगों का, समस्त चतुष्पाद चौपाई जानवरों का राजा जो सिंह है, उस सिंह की भांति नहीं हो। अरे तुम तो गांव के सिंह हो, ग्राम के सिंह हो। गांव का सिंह कहते हैं कुत्ते को, क्योंकि जो कुकुर होता है वह जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ग्राम्य पशु होते हैं, उन समस्त ग्राम्य पशुओं के ऊपर शासन करता है, जबकि जो वन्य पशु है उसके समक्ष जाने में डरता है, उसके ऊपर तो केवल शार्दूल ही शासन कर सकता है, सिंह ही शासन कर सकता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुकुर को ग्राम्य सिंह कहा गया, गांव का शेर, उसी प्रकार से हे हिरण्याक्ष, तुम भी कुत्ते ही हो, तुम भी कुकुर ही हो, क्योंकि तुम्हारे से न्यून वीर्य वाले, तुम्हारे से अल्प बल वाले जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर तुम्हारा शासन चल सकता है, मुझ नारायण के ऊपर तुम्हारा जो विक्रम है, पराक्रम है, वह काम नहीं कर सकता। और यहां पर भी वही गाली भगवान रामचंद्र रावण को दे रहे हैं कि तुम ग्राम्य सिंह हो, तुम श्ववत हो, तुम श्वान ही हो, कुकुर ही हो। त्यक्त तपस्य फलमत्य, अरे और तो क्या, तुमने समस्त लज्जा का परित्याग कर दिया। एक जो वियोचित लज्जा होती है, एक जो सामाजिक लज्जा होती है, नीति नियमों की लज्जा होती है, धर्म की जो लज्जा होती है, धर्म का जो बंधन होता है, धर्म का जो धर्म की जो मर्यादा होती है, समस्त प्रकार की सीमाओं का, मर्यादाओं का और लज्जाओं का तुमने उल्लंघन कर लिया है। त्यक्त तपस्य फलमत्य जुगुप्सितस्य, क्योंकि केवल तुमने सीता का ही अपहरण किया हो ऐसा नहीं है, तुमने पूर्व काल में भी अनेक अनेक जो सती साध्वी पतिव्रता नारियां हैं उनके सतीत्व को, उनके पापीव्रत धर्म को नष्ट किया है, जिसमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है वेदवती नाम की कुमारी कन्या का, जो कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आता है यह उदाहरण। वेदवती नाम की कुमारी कन्या थी, वह तपस्या कर रही थी और एक बार जो राक्षस राज रावण है उसने उसका दर्शन किया, कामुक हो गया और उसके ऊपर बलात्कार कर दिया और तत्पश्चात वेदवती ने उसको शाप दिया और वेदवती अग्नि में समा गई। वही वेदवती पूर्व पुराण के आधार पर जब अग्नि परीक्षा हुई रावण के वध के पश्चात लंका में जब पुनः अग्नि परीक्षा हुई और जो माया सीता जिसका रावण ने अपहरण किया था वह पुनः अग्नि में समाविष्ट होकर जो मूल सीता है वह पुनः प्रकट हुई, वह जो माया सीता थी वही यह वेदवती नाम की कन्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुमने ऐसे अनेक अनेक गणित कार्य किए हैं, केवल मेरी कांता का ही अपहरण किया हो, एक ही गणित कार्य किया हो, एक ही जुगुप्सित कर्म तुमने किया हो, केवल तुमने एक ही घृणित निंदनीय कृत्य किया हो, ऐसा नहीं है, परंतु तुम ऐसे सैकड़ों कृत्यों को कर चुके हो पूर्व में। इसीलिए त्यक्तत्रवस्य, तुम्हारे अंदर लज्जा का रंज मात्र भी नहीं है, आभास मात्र, लेश मात्र, गंध मात्र भी नहीं है तुम्हारे अंदर। क्योंकि यदि एक बार जुगुप्सित कार्य करे और तत्पश्चात यदि पुनः उसको न करे और पुनः लज्जित हो जाए, लेकिन तुम तो बार बार इन कार्यों को कर रहे हो, इससे यह सिद्ध हो चुका है, इससे यह प्रमाणित हो चुका है कि तुम्हारे अंदर लज्जा का कोई भी स्थान नहीं। मान लिया जाए कि तुम कामातुर होगे एक बार दो बार किसी स्त्री पर का जो जुगुप्सित कार्य है, जो निंदनीय कार्य है वो कर बैठो, किसी नारी की स्वतंत्रता का अपहरण करके कोई कुकृत्य कोई दुष्कृत्य कर बैठो, परंतु तुमने तो अनेक बार ये कार्य किया है। इसीलिए अब यही मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर लज्जा का नाम मात्र भी नहीं है, इसलिए त्यक्त त्रपस्य कहा गया है। जो त्रपा है, जो लज्जा है, वह रक्ति भर भी तुम्हारे अंदर नहीं है। फलम अद्य जुगुप्सितस्य, और अब मैं तुम्हें इस तुम्हारे निंदनीय कर्मों का, पाप कर्मों का फल प्रदान करने के लिए उत्तेजित हुआ हूं, उद्यत हुआ हूं, उत्तिष्ठ हुआ हूं, खड़ा हुआ हूं, और मैं तुम्हें तुम्हारे निंदनीय कार्यों का फल किस प्रकार से दूंगा? तो कहते हैं काल इव कर्तुः अलङ्घ्य वीर्यः, जिस प्रकार से जो काल होता है, वह काल जिस प्रकार से दुष्कृतिजनों को, पापात्माओं को, पापियों को जिस प्रकार से उनके पापों का परिणाम उनके अंत समय में मृत्यु के रूप में प्रकट होकर प्रदान करता है, उसी प्रकार से मैं रामचंद्र भी तुम्हारे पाप कर्मों का परिणाम तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं अलङ्घ्य वीर्य हूं। अलङ्घ्य वीर्य का तात्पर्य है मेरा जो पराक्रम है, मेरा जो शौर्य है, उसका उल्लंघन, उसका अतिक्रमण करने का साहस शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नहीं है। जो शिव तुम्हारे उपास्य है, तुम्हारे आराध्य है, जिस शिव को प्रसन्न करने के लिए तुमने अपने दश मस्तकों के ऊपर, हे दशानन रावण, तुमने अपने दश मस्तकों के ऊपर और अपनी सैकड़ों भुजाओं के द्वारा तुमने जिस हिमालय पर्वत को उठा लिया था, जिस हिमालय की कैलाश पर्वत की चोटी के ऊपर महादेव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ विराजमान थे, उनको संतुष्ट करने के लिए तुमने यह जो कार्य किया था, और फलस्वरूप उनसे तुमने जो चंद्रहास नाम की खड़ और अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे, जैसे नाभि में अमृत कोष का होना, और इस प्रकार से अनेक प्रकार के तुमने जो वरदान प्राप्त किए थे कि मुझे न देवता जीत पाए और न ही राक्षस जीत पाए, इन समस्त वरदानों की प्रदाता जो शिव है, जो कि तुम्हारे आराध्य है, वह शिव ही जब मेरे दास है, जब मेरे पराक्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रमाण है श्रीमद् भागवत का बाणासुर संग्राम दशम स्कंद का, जिस समय शिव और कार्तिकेय स्वामी स्कंद, जिसको सुब्रह्मण्यम स्वामी भी कहते हैं, वो कार्तिकेय स्वामी जिसको सेनानियों में अग्रणी कहा है भगवदगीता के दशम अध्याय में विभूति योग में, सेनानी नाम अहम स्कंद, मैं समस्त सेनापतियों में देवताओं के सेनापति कार्तिकेय है, सुब्रह्मण्यम स्वामी है, स्कंद है, वो कार्तिकेय को भी, उनके पिता शिव को भी, रिद्धि और सिद्धि के पति, समस्त विघ्नों के निवारक करता, जो विघ्नेश विनायक है, गणपति है, उन सभी को जहां पर मुंह की खानी पड़ी है, वह है बाणासुर का संग्राम। इसलिए तुम्हारे आराध्य देव भी जब मेरे पराक्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो भला तुम कौन हो कि तुम मेरे पराक्रम का उल्लंघन कर लो? इस प्रकार का जो भाव है वह इस श्लोक का निकाला गया है। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आसुरिक प्रकृति के लोग हैं, उन आसुरिक प्रकृति के लोगों को भगवान उसी प्रकार से दंड दिया करते हैं, और श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता का जो 16वें अध्याय का श्लोक है उसका भी उद्धरण देते हुए कहते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्। असत्यम अप्रतिष्ठम थे, 16वें अध्याय श्रीमद् भगवद्गीता का जो 16वां अध्याय है उसके उपोद्घात प्रसंग में भगवान ने अर्जुन को कहा कि जितनी भी चराचर सृष्टि है, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी है, जितने भी चढ़ चेतन प्राणी है इस संसार में, वह द्विधा विभक्त है। कुछ दैवी प्रकृति के आश्रित है, कुछ आसुरी प्रकृति के आश्रित है। तो जो आसुरी प्रकृति के आश्रित है उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठन्ते। कुछ आसुरिक लोग ऐसा कहते हैं कि यह जो संसार यह मिथ्या है, यह केवल कल्पना मात्र है, यह मिथ्या है, इसमें सत्यता है ही नहीं। सत्य का अर्थ है जिसकी सत्ता हो, जिसका अस्तित्व हो, उसको सत्य कहा गया है। परंतु जिसका अस्तित्व ही न हो, जिसकी सत्ता ही न हो, उसको आकाश पुष्प की भांति, उसको जो खम पुष्प है, ख पुष्प, उस आकाश पुष्प गगन पुष्प की भांति मिथ्या अनिक अथवा असत्य कहा गया है। जिस प्रकार से आकाश पुष्प एक कवि की कल्पना मात्र है, आकाश पुष्प नाम की वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार से यह जो विश्व है, यह जो जगत है, संस्कृति है, संसार है, प्रपंच है, वह मिथ्या है, उसकी सत्ता ही नहीं है। इस प्रकार से जो लोग कहते हैं वह उत्तम कोटि के असुर है। इसीलिए असुरों के लक्षणों का वर्णन करने में सबसे पहले असत्यम का भगवान वर्णन करते हैं। असुर बहुत प्रकार के हैं, असुर अनेक तरह के हैं, लेकिन उनमें जो सर्वोत्तम कोटि के असुर है वे ऐसा मानते हैं कि यह जो संसार है वह मिथ्या है। इसलिए मायावादी लोगों की यह जो धारणा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही मना पड़ा, ब्रह्म एकमात्र सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में, परब्रह्म में कोई भेद नहीं है, संपूर्ण केवल अद्वैत है, तो ये जो मायावादी लोग हैं वे उत्तम कोटि के असुर हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का जो ये असत्यम प्रतिष्ठम श्लोक है उसके पहले ही शब्द के द्वारा जाना जा सकता है। तत्पश्चात कुछ असुर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अप्रतिष्ठम, इस संसार की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसका कोई आश्रय नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई स्रोत अथवा जनक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यह संसार है ही नहीं, जब यह मिथ्या है, तो मिथ्या वस्तु का भला स्रोत क्या होगा? जब कोई वस्तु की सत्ता ही नहीं है तो उन अन अस्तित्व वाली जो वस्तु है उस वस्तु का भला स्रोत ही क्या होगा? यदि किसी वस्तु की सत्ता है तभी तो उसका कारण हो सकता है, यदि किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है तो उसका कारण, उसका उत्पत्तिकर्ता कौन होगा, उसकी प्रतिष्ठा कौन होगी, उसका आधार कौन होगा, उसका आश्रय कौन होगा? इसलिए यहां पर अप्रतिष्ठन्ते जगत आहुधनेश्वरम। कुछ असुर इस प्रकार से हैं, जिस प्रकार से जैन और बौद्ध, जो कि इस प्रकार से बकवास किया करते हैं कि जगत आहुधनेश्वरम, यह जो जगत है यह अनिश्वर है, जगत का कोई ईश्वर नहीं, इसको नियंत्रित करने वाला कोई ईश्वर है ही नहीं। जो जैन और बौद्ध मत है, जो कि वेद विरुद्ध मत है, वेद बहिष्कृत जो मत है, अवैदिक मत है, उनका यह कहना है कि ईश्वर है ही नहीं, जगत आहुर अनिश्वरम। और जो चारवाक के अनुयायी है, जो निपट भौतिकवादी है, उनका भी यही मानना है कि ईश्वर नहीं है। अपरस्पर संभूतम की मन्यत काम हरितुकम, अपरस्पर संभूतम। और कुछ भौतिकवादी राक्षस प्रकृति वाले जो असुर है वो ऐसा मानते हैं कि यह जो संसार है यह तो अपने आप कुछ तत्वों के मिश्रण से अपने आप उत्पन्न हो गया है, जिस प्रकार की विचारधारा आधुनिक वैज्ञानिकों की है। अपरस्पर संभूतम की मन्यत काम है तो कम। और चारवाकादी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि तिमन्यत काम है तो कम, काम वासना के अतिरिक्त स्त्री पुरुष के मध्यस्थ जो मैथुन संसर्ग की इच्छा है, जो मैथुन समागम की इच्छा है, इस समागम की इच्छा के अतिरिक्त इस चराचर सृष्टि का और दूसरा कारण ही क्या हो सकता है? क्योंकि जब मैथुन संसर्ग होता है तभी सृष्टि कभी उत्पत्ति होती है, इसलिए मैथुन संसर्ग ही इस जगत का जो भोग है, जो इंद्रिय तृप्ति है, जो जननेन्द्रियों का तर्पण है, वही संसार का एकमात्र आदि कारण है। कोई ब्रह्म नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई जन्माद्यस्य यतः इत्यादि जो वेदांत के वाक्य है वो सब मिथ्या है। एकमात्र स्त्री और पुरुषों की जो काम इच्छा है वही इस संसार का कारण है। इस प्रकार से ये जो असुर लोग हैं माना करते हैं, और इस श्लोक का उदाहरण श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में देते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भगवद्गीता में आगे भगवान असुरों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो असुर हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, किस प्रकार से विचार करते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं। जो गीता का द्वितीय अध्याय है सांख्य योग का वर्णन करने वाला, उस अध्याय के अंत में अर्जुन ने प्रश्न किया, गुणाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान से प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित भी किम प्रभाषेत किमासी तजेत किम, जो स्थित भी है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो आत्म तत्व को प्राप्त है, जो आत्म साक्षात्कार की सिद्धावस्था को प्राप्त है, जो ज्ञानी है, उनके क्या लक्षण है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से जो राक्षसों का स्वभाव है, राक्षसों की जिस प्रकार की बोलचाल और उनकी जो रीत भात है, रहनी सहनी है, उसको और बताते हुए कहते हैं कि असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। असौ मया हतः शत्रु, मेरे द्वारा मेरे जितने भी शत्रु हैं वे समस्त मारे जा चुके हैं। आज की तारीख तक अद्यावधि पर्यंत जितने भी मेरे रिपु हुए हैं, जितने भी मेरे अरि हुए हैं, जितने भी मेरे शत्रु हुए हैं, उन समस्त शत्रुओं को मैं मार चुका हूं, और भविष्य में मेरे जितने भी शत्रु होंगे उन समस्त शत्रुओं का भी मैं ही वध करूंगा। हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही इस संसार का नियंत्रण करने वाला हूं, अर्थात मेरी इच्छा के अनुसार ही यह संसार नियंत्रित होता है, अर्थात मैं जिसको जीवित रखना चाहूं वह जीवित रहे और मैं जिसको मारना चाहूं वह मृतक हो जाए। इसीलिए मेरी इच्छा के आधार पर ही समस्त अन्य प्राणियों का अस्तित्व है इस संसार में, मैं ही अन्य समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, उनका नियंता हूं, उनको नियंत्रित करने वाला हूं, मेरी इच्छा के अनुसार ही समस्त कार्य, समस्त वस्तुएं और समस्त व्यक्ति परिचालित होते हैं इस संसार में, इसलिए मैं उनका ईश्वर हूं, ईश्वर अहम अहम भोगी। और इस संसार में जितने भी पदार्थ है, इस संसार में विशेष करके जो पंच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषयों से युक्त जितनी भी सामग्रियां हैं, जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, उन समस्त भोग्य पदार्थों की सत्ता क्यों है, जितने भी संसार के विषय हैं, जितने भी संसार के ऐश्वर्य है, सुख है, धन संपत्ति है, भोग्य पदार्थ है, उन समस्त भोग्य पदार्थों की सत्ता क्यों है, क्यों है ये समस्त भोग्य पदार्थ, क्योंकि ये समस्त मेरे लिए निर्मित हुए हैं। इन समस्त भोग्य पदार्थों का, संसार की जितने भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ हैं, जड़ और चेतन पदार्थ हैं, इन समस्त पदार्थों का जो निर्माण हुआ है वो एकमात्र मेरे भोग के लिए इनको बनाया गया है, इसीलिए मैं इन समस्त का भोगता हूं, भोगी हूं, सिद्ध अहम, मैं सिद्ध हूं, मुझे किसी अन्य व्यक्ति के पास से शिक्षा प्राप्त करने की अथवा प्रशिक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्ञान अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही सिद्ध हूं, आई एम परफेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग, बलवान सुखी, और मैं बलवान हूं और सुखी हूं, जो चाहे कर सकता हूं। आढ्य अभिजनमानस्मि कौन्योस्ति सदृश मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञानविमोहितः। और आढ्य मैं धनवान हूं, समस्त संपत्ति से युक्त हूं, अभिजनमान अस्मि, और मैं चारों ओर से कुलीन और उत्तम भद्र लोगों के द्वारा घिरा हुआ हूं। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, अरे मेरे समान सदृश अन्य कौन हो सकता है। यक्षे दास्यामि मोदिश्य, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस प्रकार से आनंद प्राप्त करूंगा, और इस प्रकार से जो दैत्य है, आप असुर है, निशाचर है, राक्षस है, वे अज्ञान के द्वारा विमोहित होते रहते हैं, वे यज्ञदान इत्यादि क्रियाएं क्यों करेंगे, कीर्ति प्राप्त करने के लिए, उनका अन्य कोई आशय नहीं है। तो तान हम द्विषतः क्रोरान संसारेषु नराधवान क्षिपाम्यजस्रमशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। इन लोगों को, ऐसे असुरों को जो कि क्रूर प्रकृति के हैं और जो कि अशुभ पाप कृत्यों को करने वाले हैं, दुष्कर्मों को करने वाले हैं, और जो कि मुझसे, मुझ परमात्मा से, भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा से, मैं परमात्मा कैसा हूं, जो कि उन असुरों के शरीर में भी स्थित हूं और अन्य लोगों के शरीर में भी स्थित हूं, उस मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले इन असुरों को मैं निरंतर जो आसुरिक योनियां हैं उन आसुरिक योनियों में डालता रहता हूं, और जो राक्षस योनि है वह भी आसुरी योनि ही मानी गई है। प्रश्न हो सकता है कि रावण तो राक्षस नहीं हो सकता है, रावण तो ब्राह्मण कुल में जन्मा है, अवश्य उसके पिता जो विश्रवा नाम के मुनि है वह ब्राह्मण कुल के है, परंतु रावण की जो माता है वह राक्षस कुल की है, इसलिए रावण को राक्षस भी माना गया है और ब्राह्मण भी माना गया है। लेकिन ब्राह्मण केवल नाम मात्र के लिए है, तो इसीलिए आसुरिष जो राक्षस है, जो राक्षस प्रकृति के लोग हैं उनको मैं राक्षस अर्थात जो अंत तामसिक आसुर योनियां हैं उन्हीं में डालता रहता हूं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम परदेहेषु प्रद्विषंतोभ्य सूयका। और ऐसे जो असुर है वे निरंतर क्षण प्रतिक्षण अहंकार बल दर्प काम और क्रोध के आश्रित रहते हैं, और ये समस्त जो लक्षण है वो रावण में विद्यमान है, इसलिए रावण को दंड देना भगवान रामचंद्र ने उचित ही समझा है, योग्य ही समझा है। और अब कुछ क्षणों में रावण जो राक्षस राज है वो मृत्यु को निधन को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां पर इस श्लोक की जो व्याख्या है, इस श्लोक की व्याख्या तो बहुत विस्तृत है, परंतु संक्षेप में समयाभाव के कारण इसको यहीं पर स्थगित किया जाता है। कोई प्रश्न हो अथवा जिज्ञासा हो श्रोताओं को। क्योंकि मानववत लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र की लीला लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भांति नहीं है, मानववत लीला है। मानववत लीला होने के कारण समस्त जो कार्यकलाप है भगवान राघवेंद्र के वे मानव की ही भांति संपादित होते हैं, इसीलिए वे अपने अपना जो अप्राकृत पराक्रम है उस अपने अप्राकृत पराक्रम को केवल उन्होंने एक ही बार प्रकाशित किया है। संपूर्ण रामलीला में जो भगवत्ता है, भगवत्ता को श्री राम ने एक ही बार प्रकाशित किया है, और वो कौन सा समय है, जिस समय समुद्र के देवता वरुण भगवान राघवेंद्र को मार्ग देना नहीं चाहते थे, पथ देना नहीं चाहते थे, उस समय राघवेंद्र ने समुद्र देव को और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन तक निराहार रहकर अनशन व्रत को धारण करके एक आसन पर बैठकर प्रयत्न किया, परंतु जब भी वे संतुष्ट नहीं हुए तो भगवान राघवेंद्र के अंदर अपना जो मूल स्वभाव है, भगवत्ता का जो स्वभाव है वह उद्बोधित हो गया, प्रकाशित हो गया और समुद्र को ललकार दिया। यह समुद्र तुम क्या विचार करते हो, तुमको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूं और मेरी सत्ता से ही तुम इस समय जीवित हो, और फिर भी तुम मुझे मार नहीं देना चाहते हो, इतने कृतघ्न हो तुम। उस समय समुद्र हाथ जोड़ के भगवान के पास आए। तो एक ही ऐसा समय है संपूर्ण रामलीला में, एक ही ऐसा काल है, एक ही ऐसा प्रसंग है, एक ही ऐसी परिस्थिति है जबकि भगवान राघवेंद्र के भीतर उनकी जो स्वाभाविक भगवत्ता है वह उद्बोधित हो आई हो, अन्यथा संपूर्ण रामलीला में कहीं भी भगवत्ता का प्रकाश नहीं है। समस्त स्थानों पर एकमात्र मानव की ही भांति उन्होंने लीलाएं संपादित की है। और कोई प्रश्न है, समय हो गया है, क्योंकि अंग्रेजी कक्षा में तो 9:30 तक चला सकते हैं, यहां पर प्रसाद की भी व्यवस्था होती है, इसलिए सत्र यहीं स्थगित करते हैं। कोई प्रश्न हो तो व्यक्तिगत रूप से पूछे जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पिताय लोक प्रेमानंदे हरे।
श्रीमद् भागवत पुराण की श्री प्रभुपाद महाराज की
प्रभु। एक प्रश्न किसी से, जब रावण काल ने बताया कि माता राक्षस कुल की थी, पिता ब्राह्मण कुल का था, वो राक्षस कुल, तो ये जो चल रहा है कि वर्ण आश्रम अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो क्या शूद्र जो है ब्राह्मण के स्तर तक जो मान रहे हैं इस संदर्भ में है? नहीं, जब रावण राक्षस कुल का था, राक्षस माना अपना, तो जो
उसमें उत्पन्न हुआ है
राक्षस कुल के थे ब्राह्मण राक्षस कुल का था रावण परंतु उसका जो कर्म है वह भी राक्षस की भांति था जबकि विभीषण का जो कर्म है वह राक्षस की भांति न होकर एक भगवान का जो शुद्ध भक्त है वैष्णव है उसकी भांति था इसलिए विभीषण को राक्षस होते हुए भी विभीषण को भगवान का परम भक्त माना गया वैष्णव माना गया उत्तम वैष्णव माना गया और जो उत्तम वैष्णव है उत्तम वैष्णव का स्थान तो ब्राह्मण से भी उत्कृष्ट माना गया है शास्त्रों में इसीलिए तो हनुमान जी भी जब लंका को जलाने के लिए आए हैं उस समय विभीषण को देखकर और उनके घर के आगे राम नाम को लिखा देखकर उन्होंने उनकी मुलाकात ली है और मतलब उनके साथ जो है थोड़ी थोड़ा वार्तालाप जन्म से ही देखा जाए रावण जन्म से राक्षस है लेकिन उसका कर्म विभीषण की भांति होता तब तो उसकी जो है प्रसिद्धि हो जाती लेकिन उसकी जो है उसका पुण्य फैल रहा है उसकी अकीर्ति फैल रहा है प्रसारित हो रही है क्योंकि उसका कर्म ही राक्षस की भांति तो इसलिए कर्म ही मुख्य माना गया जैसे कि इस कलयुग में तो खास करके कर्म ही मुख्य स्वभाव को अंतर
तो कलयुग भगवत का समय समस्त सुपर मिलते जो खुश किया है उसके लिए दादा रानी हमको महापुरुषा दिया
अहिल्या माता का सब करें अहिल्या माता का
अधिकार दिया है मैंने इंद्र आदि लोकपालों को मैंने अधिकार दिया है शासन करने का विभिन्न लोगों पर इस प्रकार से मैंने जो है समुद्र के ऊपर अधिकार दिया लेकिन अब तो अधिकार का दुरुपयोग करके अपने अधिकार को मेरे ही ऊपर दिखाना चाहते हैं ऐसा भगवान स्वेच्छा से बोला गया बटन जहां पर भगवत का प्रकाश वहां की भगवत का प्रकाश होती है क्योंकि मुक्ति एकमात्र भगवान ही दे सकते हैं परंतु वहां पर विश्वामित्र ने कहा है इसी का उन्होंने वैसा काम किया वहां पर यह भी माना जाता है जो महाराजा का पालन किया ये भी माना जाता है वहां पर भगवत का जो है मात्रा में प्रकाश किया देखिए भगवान रामचंद्र ने विजय को भेजा था और भगवान रामचंद्र मीरा संपादन बोलना नहीं चाहता वीर बस का राजा करना चाहता है वीर बस का उत्पादन करने के लिए कोई शुल्क नहीं चाहता भगवान को उतना आनंद नहीं आएगा पार्षद ही है क्योंकि इनको समाज शक्ति मांग और भगवान को उसके साथ भगवान ने जो है चार कुमार के द्वारा साथ दिलवाकर पृथ्वी पर भेजा रावण और कुंभकर्ण के रूप में लेकिन किसी भी लीला को दो तरह से देखा जा सकता है एक तो अंतरंग रूप से और बाह्य रूप से रावण का कोई अपराध नहीं है सब कुछ भगवान ने खर्च किया
Things are there about Lord Ramchandra. But the time was short, so.
Only
45 minutes time you cannot. कल का वैसे जैसे आपने कहा था राजश्री प्रभु का
हाँ अपने कल
बार हाँ तो
मेरा जन था मेरे को कल बॉम्बे जा रहे
हैं अच्छा ओके तो राजश्री प्रभु नहीं आ पाएंगे because of the land thing somebody donating the land yeah all the papers are ready but the lawyer is making some other investigations we have the problem nahi hai
tumhara t-shirt band nahi karu uska kaam
uska
to banaye to banaye abhi uska uska kaam hai ye andar mein se kya hai sita mata main to aap aage vasna
kya
pasand nahi
kon
sita
nahi jo maya sita hai wo vedvati naam ki kanya hai पर जो ओरिजिनल सीता है वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है
तो कृष्ण लीला और राम लीला में फर्क क्या है आह्लादिनी शक्ति राधा रानी है ना
नहीं राधा रानी की अंश स्वरूपा है लक्ष्मी और सीता लक्ष्मी और सीता आर दी एक्सपांशंस ऑफ राधा रानी नहीं इसमें क्या है आह्लादिनी शक्ति ओरिजिनल आह्लादिनी पोटेंसी इज राधा रानी बट व्हेन शी एक्सपांड्स इनटू नो स्मॉलर एक्सपांशंस देन शी मैनिफेस्ट्स हरसेल्फ इनटू लक्ष्मी एंड सीता एंड योग माया इवन योग माया देयर आर एक्सपांशंस ऑफ राधा रानी जस्ट लाइक राम राम इज ऑल्सो भगवान बट ही इज नॉट स्वयं भगवान सो राधा रानी शी इज ओरिजिनल आह्लादिनी एंड सीता इज नॉट द ओरिजिनल आह्लादिनी बट सेकेंडरी आह्लादिनी पोटेंसी यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे यस दे विल से दैट नारायण इज द स्वयं भगवान कृष्ण इज द अंश ऑफ नारायण
फॉर गिविंग दिस क्लास फॉर रामायण उपस्थित था ना Ramanujacharya. I was reading a lot of books. So these all books are translated by Sankara philosophy people. So they really twisted everything. Narayan is the supreme authority, and from Narayan Krishna emanates. And because Krishna and Ram, everything comes from Narayan, Krishna and Ram and Ramanujacharya, everybody is saying. But Ramanujacharya never, his books, Ramanujacharya, Sribhashya Likhan. Sribhashya is also translated by some Mayavadi people. So the original Sribhashya you cannot see. I don't think he will. Vishishta Advaita, right? What is that?
No, Sri Bhashya, if somebody knows Sanskrit, then he can study the original text.
Yeah, that's the problem. But this is in English.
When you rely on the translation, this happens.
Yeah, they really mixed, corrupt.
Yeah, corrupt
translation. So Sri Bhashya English, I was born in reading. But that is Vishishta Advaita, right? Vishishta Advaita philosophy is still like Avalon, Brahma, Gaudiya, same thing.
Yeah. Little difference, but almost the same.
What is the difference?
The distance is, Ramanujacharya says that Narayan is the Swayam Bhagavan, whereas Krishna and...
No, Ramanujacharya doesn't say that.
Yeah.
Really?
Yeah, Ramanujacharya says that. That is the Vishishtadvaita philosophy. That is why the Gaudiyas, they are different from everyone because they accept Krishna to be the Swayam Bhagavan.
So Ramanji, this says Narayan is the Param Bhagavan,
Yeah. And the Shankar people, they say that we are ourselves Narayan. No difference between the Jivas and Narayan. That is the Mayavadis, the Shankaracharya.
Okay. So
Ramanji
says Narayan is the Supreme.
Yeah.
And Krishna is coming from Narayan.
Yeah. That is what
they are. Narayan means Vishnu, Chaturbhuj
Vishnu. Yeah, Chaturbhuj Vishnu.
That is Narayan. So, but what is the wrong? If Vishnu and Krishna is same, then Vishnu and Krishna is same.
Yeah. That is why, when Venkat Bhatta was debating with Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita, at that time Venkat Bhatta first said that no, Narayan is the original source of Krishna. But then Mahaprabhu gave Shastric quotations. And so Venkat Bhatta said, okay, then let us accept Krishna to be the Swayam Bhagavan, but still, you know, I am attracted towards Narayana. So, like that. Venkat Bhatta was a Ramanuji.
Sri Sampradaya. Those people, there was either Sri Sampradaya or Shankar Sampradaya.
Yeah.
South India, all days.
Or Madhvas.
No, Madhvas was very rare.
But those are rare.
It would be like 500, 600.
Yeah, otherwise.
They never spread anywhere.
Yeah.
If you go all over Tamil Nadu,
yeah,
all over Karnataka, all over Kerala, so Ramanji or Shankar Sampradaya. Okay? This is called Dharwad, it is like a corner of Karnataka, Mangalore side. That's where only Gaudiya Madhvacharya spread it, you know. Madhvacharya didn't work that hard like Ramanujacharya.
Yeah, yeah. He was a brilliant genius, but he did not preach much.
So he was not spread the Madhvacharya philosophy. So all the acharyas didn't come to change this thing, you know. Otherwise, then you know everybody's mind. Like this version, they are coming dancing here. Prabhu, Parabhu. You cannot take prasadam in speed plane. You need to take prasadam in patta.
Yeah.
Go ahead and follow that. No problem. Prasad mangam, is that the legal?
No, no, I will take in my hand. Actually, kya hua? Vaishnava Prabhu told me that he wanted to meet you.
bhashya.
Actually, I wanted to speak deep on Ram Lila, but the thing is, shlok pe bolte bolte hi time chala gaya. Vyakaran
nahi chala. Vyakaran mein time story ke bol. Nilo vyakaran mein samajh nahi aaya.
Samajh nahi hai.
Jab sandhi wo sab kar. Serve you, thanks to serve you. Kya kitni mere ko chala?
No, he's doing okay. Actually, it is a small center, so not lot of tension. Yes, not like Vrindavan.
पिताजी को जल्दी इधर बुला लो, वो पंजाबी लोगों को तंग करेगा पिताजी से.
पंजाबी आर वेरी इगोइस्टिक पीपल.
उधर कुछ होता नहीं है ऐसा, तो दे आर डूइंग एनीथिंग टू.
नो नो नो,
कलेक्शन कुछ होता है.
कलेक्शन होता है, लाइफ मेंबरशिप, बट एक्चुअली देयर इज नॉट नो नीड ऑफ कलेक्शन आल्सो. लुधियाना इज सच अ प्लेस दैट एवरी मंथ the needed amount comes to the temple on its own accord. ₹3 lakh every month collection in the hundi. But still we are doing life membership because devotees have to be active, otherwise they will just sit and sleep. And not lot of expenses also, small something. This is hot. Not like the chapati standard. Not like the chapati in Pune. That standard is very high. Yeah. Before 4:15, all the 80 brahmacharis, they have 80 brahmacharis in chapati. All the 80 brahmacharis have to be within the temple room chanting 15 minutes before the Mangala Arati. और वो लोग register लेके बैठते हैं. Who came, who did not come. They will not get morning prasad.
You don't want this phone?
No.
I had to work on the computer.
Yeah.
I like to work on the computer.
ایکچولی یہاں پر جو پروچن کا ہال ہے وہ تھوڑا الگ ہونا چاہیے. لائک ان مایا پور دے ہیو یو نو ٹو ڈفرنٹ لیکچر ہالس, ون فار انگلش ون فار بنگالی. Actually, Ravana has, there is a long description in Valmiki Ramayana, how Ravana conquered all the three worlds, defeated all the devatas and all the, you know, other kings. Hundreds of stories about Ravana. Like one time, he was loitering on the banks of Narmada near the Mahishmati, that is present day Ujjain. So at that time there was this Sahasra Arjun, Kartavirya Sahasra Arjun. So he was bathing with his wives in the river. So Ravana came there. Actually, what Sahasrarjuna had done with his 1,000 arms, he had stopped the flow of Narmada. So Ravana's camp was also nearby. He and his Rakshasas. So Ravana wanted to take bath, but he saw no water is coming because the flow has been stopped by Sahasrarjuna's arms. So Ravana went there angry, trying to wrestle with Sahasrarjuna. So Sahasrarjuna, instead of, you know, giving him a chance of wrestling, Sahasrarjuna put Ravana underneath his arms for 6 months continuous. This and many other stories are there.
When you stand on the
So how is Devami Prabhu doing?
Today also he is in Chandramalati mountain.
Acha.
He didn't go at all today.
I think he remains ill. He's in the management. He's a sadhu actually.
Yeah. He's a sadhu.
Good preacher.
Which Ramayana I should read to get all the stories?
Not the ISKCON Ramayana, published by Bhakti Vikas Maharaj, because that is very short. It does not have any shloka also.
I can read this one.
Black. Then we ask the other boy.
Okay,
Mathura, Mathura. You know
Mathura? No.
Okay.
Then I can come later.
No, you go here.
I just call.
Ask Mathura. This is my card, okay? Don't give it to him. Okay, Mathura. His name is Mathura Jeevan actually.
I need to ask.
Yeah, ask him. He may have, he keep all the stuff he got from the...
Yeah. Okay, thank you.
You took Prasad?
No.
Take one laddu from there.
No, take one.
Aapka laddu bahut swadishta hai.
Hello?
Nee, theek hai, aap prasad le lijiye.
वजन में देते हैं
थोड़ा सा pickle with coconut oil.
Oh, yeah. You like coconut oil?
Yeah. But it is full of cholesterol. I heard.
Cholesterol is good. Can only remember Krishna.
At the time of misery. Vipadaha santu taha. Kunti also prays.
Everybody is happy.
Okay.
یہاں سے ادھر تک چل کے جائے گا تو رکشا میں جائے گا؟
نہیں آج تو میں رکشا میں جاؤں گا
کھانے کے بعد.
ہاں ادر وائز آئی واک.
جلدی پیک کیا نا تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پیک کرنا چاہیے.
ہاں
تو ٹوٹ گیا.
بہت سافٹ لڈو ہے, ہاتھ مارتے ہی ٹوٹ جاتا ہے.
ہم لوگ کو ٹائم نہیں ہے نا بنایا ترنت پیک کیا, اس پر بیٹھنا پڑتا ہے ٹائم. ایسا کچھ پیتے ہی بات دیکھتا ہے ٹائم پڑا ہوا بنایا پیک کیا پلاسٹک ایک دم ایئر ٹائٹ پیک کرتے نا تو کھل جاتے ہیں. اگر اس کو کھلا رکھے گا نا تو پتھر جیسے رہے گا, کیونکہ میرے پاس سافٹ اچھا لگتا ہے پتھر جیسے نہیں.
رادھا
کرشنا
گرو
جی رادھا کرشنا گرو جی نہیں وین یو بیکم گرو مائی گور یو ہیو اور چلا
آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم گرو بیکاز what I'm saying is after becoming guru
but I have booked already. Okay, I will be your secretary.
Okay, yeah?
All the money I will collect, you become all the, you get all the prasad. But your mummy will get, mummy will get all the blessing.
Yeah? Yes, guru banne ke baad kya hai log matlab is tarah se dekhte hain ki ye to apna shishya banane ke liye prachar karte hain groupism jaisa
jo aapne samne kaha. گرو بننا ہے آپ کو ایک دن مدو آچاریہ رامانجا آچاریہ جیسے پرچار کرو گھومو یا یہ سب سنسکر جو ہوتے ہیں نا تو بندھن ہو جاتے ہیں.
بندھن ہو جاتا ہے
تو مارو گورے لوگ بولے وہی کرنا ہے. گورے لوگ کا انڈین لوگ کے جگہ میں تم بیچ میں رہو, تم کو یہی کرنا ہوگا, مشین بناؤ, یہ نہیں بول سکتے وہ نہیں کر سکتے. Agar if you are learners, you have good support from the public, you don't need to be.
Yeah.
You know, fighting with these people. Yeah, it's
good stuff. So that's how they take it. Yes, sir. Bhuti Krishna Goswami of Radha Raman Temple. He is also doing his kathas independently.
Abhiti is called Osh Ruhiya. لاک ڈاؤن والے کا دوست سیلا کرتا ہے, ساکشی کرتا ہے, جہاں جانا کرتے دلی میں دس پندرہ لوگ اس کام کا نام سے بہت ہی چلا رہا ہے.
پریچرز آر نیڈیڈ.
نہیں پریچنگ ٹھیک ہے, آپ کے جیسے پریچنگ نہیں ہے لوگ ہوتے ہیں. ساکشی جو لوگ کیا پریچنگ کرتے ہیں, ہرے کرشن بولو, ہرے کرشن ہرے کرشن
بات اینڈ اسکریم سی ہیز ٹو مچ.
وانی کتنا دھوکھے بازی وانی ہے, دھوکھے دھوکھا دھوکھے بازی ہوتے ہیں. وانی کا پتھر جیسے پتھر میں رگڑتے ہیں اس کا وانی الگ ہے. جب آپ مکھن ملائی نکال کر دودھ سے اس کا وانی الگ, اس کا ساؤنڈ الگ ہوتا ہے. پانی لگ رہا ہے وہ پہاڑ سے گرتے اس کا. تو بدھی مان ہے کہ اس کو ترنت مال بڑھ جاتا ہے آدمی کا پانی.
آپ ان کو جانتے ہیں جو دبئی میں ہے نا شری ولبھ داس؟ بیکاز وی آر پلاننگ ٹو گو ٹو دبئی آلسو. ایسا
بہت ریسٹرکشن ہے اور 50 ہندوستان امیرکن تو اوپن ہے نا, کین ڈو بگ بال اینڈ یو کین گیٹ پیپل ان امریکہ از گڈ, بٹ اور دبئی از ویری لیبر کلاس پیپل.
انڈینس ہو آر دیر دوز دے آر آل لیبر کلاس.
99% only 1% there is one Gujarati selling gold, you may have money, no? Why you want to get the 1% people? Well, there is 99% rich in America. Right? America, like 1% labor, 99% rich. So they don't give visa unless you have post degree, right? Yeah.
I have the passport.
No. The people already gone there. They got the visa, H1 visa, because you have master degree. So 99% people are qualified in America.
Yeah.
Here in the Gulf country, all labor class people they take. No highly qualified. Highly qualified people, they will not go to Gulf, they will go to America or Europe.
Yeah.
And should they go for, 7 rupee dinar, where you can get 45 rupees?
Yeah.
Mad computer boy, they never go to Gulf country. So, it is... question of how you
and my
preaching, if you want to compare only pure preaching, then it's different.
Yeah, my preaching is actually for the intellectual class of people.
So I
cannot wear this dhoti kurta.
You have to respect getting visa. Oh my god, Debra Maharaj, Ravalistama, they all wear on pants. You cannot even take a murti with you.
This Devamrit Prabhu had also went some months before.
Yeah.
He went in Pantra.
Yeah.
Acha.
It's the first time in my life you wear that. It's not worth it. Because I have been to all the Gulf country. I know all this, half of them they are from Kerala, So the Kerala, good people are in Europe and America. Only the 11 class people are there, so we know.
I see.
There are one or two, just like if you go to Bombay, how many Hindus are there?
Yeah.
Right?
Yeah.
In Bombay is 50-50. 50 rich, 50 poor. But Gulf is not like that. There's only 1 or 2%.
Achha. Otherwise the Arabs have all the money.
Yeah, of course. They don't even give you one single house to live. You have to live after the lease is over. You can only lease. Anything you do, 49%. 51% is their partnership in the business.
Achha.
You cannot buy a land, you cannot buy a house, you cannot buy a...
Which everything is on lease and rent.
Nothing. You don't have any ownership on anything in there.
No right of election or nothing.
They will not even give citizenship, no green card, nothing. Labor visa, work labor visa, extend or go back. Nobody can stay.
Very strict. Because they know that once other people will come, it will not remain an Islamic country.
It is not a question of the progress of country, it is a question of the reason.
Islamic.
They are very strict.
Yeah, that's right.
They don't think this. Any Arab country, they will not give you citizenship. What? Even you are American.
Achha.
American, they will get entry without visa, passport, only thing. You need a sponsorship, somebody come in the airport and sign, I'm taking him to the from the airport, I'll bring him back, that's all. You cannot even walk out. Yeah, somebody has to come and escort you from the airport.
Achha. What about Pakistan? Guru Maharaj goes there and preaches.
If you go to Pakistan, you have an American passport. Forget. You're on blacklist.
Achha.
Unless you are a big shot, you are the secretary of Gujarat or some big shot, then they won't suspect.
So how does Guru Maharaj go to Pakistan?
He has a bunch of passports, he has like a traveling on the way, You take a flight on Pakistan Airlines, go to Russia, so on the way you stop, something like that.
Achha.
That's very good.
They are also very strict.
They are not even strict, they are low class. And seeing that stamp of Pakistan entry, all the other countries get suspect. They only have spies. Pakistan visa is always dangerous in your passport.
Oh, acha acha. Once they see that you have Pakistan visa, they can suspect. Because all the terrorists, they are coming from Pakistan. Yeah, I see.
So if you want to really travel to America with that stamp,
Yeah.
Why you want to go underground?
Acha? Somebody told me there is a big temple in Karachi.
No. The basement.
Oh, acha, it's in a basement.
I know those boys, they were here. I went there, I have picture of the thing. You can see, you know, 20 people sitting in a small statue of Lord Krishna in the basement.
Acha?
It's all in here.
So, no need of going there also.
Go to Europe, country, America. We have freedom to preach, we have response from good people.
Okay.
African countries are good.
Yeah. Kenya and South Africa.
So there are a lot of Gujaratis.
And African countries, there is no prohibition. Yeah?
No prohibition.
Free.
They are free. Mm-hmm. Plus, the local black people are always dangerous, you know.
Yeah.
Otherwise, you have a little freedom.
Mm-hmm. Okay.
But if you go to Trinidad, Guyana, I went there. Free, you know, like India. Mm-hmm. You can go anywhere.
What about this part, Australia and New Zealand?
Australia, New Zealand is good, but Indian percentages are less.
Achha.
Australia, Sydney has some Indians, and they all are spoiled. Because there are 300 yoga groups, 500 ISKCON groups, Narayan Maharaj, and Kuttu Maharaj, and Puri Maharaj, Bhavananda, Ball Down, all these things.
Okay, Prabhu. So, I'll take a look at it and then I'll
come.
Okay, Prabhu, so I
take
your leave. No, she was there. Yeah, in the back side. Aapka card mein le leta hoon.
Okay, okay.
Okay.
बाथरूम वगैरह भी बने
चैनल ले लो बस बस इधर इधर दस वर्षों से थोड़ा पहले ही
श्रेष्ठ ने ऑफिस में बैठा था ना લેક્ચર છે ને શ્લોક ઉપર જ મેં આપ્યું છે, કારણ કે બાકી તો રામ તત્વો ઉપર તો સાઈડમાં ઘણું બોલી શકાય છે. ટાઈમ ક્યાં હોય છે? 40 મિનિટ માં તું કેટલું બોલો? મજૂરી કરવા, કારણ કે ચીની જાતના લોકો ને તમારે ટીચિંગ કરવું હોય એટલે તમે કરી શકો છો. અને કે છે ત્યાં કે છે કે ડ્રેસ નું મને કહ્યું, મેં કહ્યું તમને ખબર છે ફ્રીડમ ના હોય ડ્રેસ પહેરવાની મળી. મને ખબર છે ત્યાં બધા સાઉથ ઇન્ડિયા ના ઘણા લોકો છે, કેરળ ને તમિલનાડુ ના, પણ કે છે ત્યાં લેવર ક્લાસ કે છે જે મોટી મોટી ડિગ્રી વાળા છે ને કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર કોઈ દુબઈ ના જાય. ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ જેટલાય છે મિડલ ઇસ્ટ ના, એમાં બધા ઇન્ડિયાના જે લોકો છે બધા લેબર ક્લાસ ના છે, કારણ કે આરબો જે છે લેબર કરવા ના માંગે, પ્રેસ્ટીજ નો સવાલ સમજે છે, એટલે લોકો ઇન્ડિયનો ને લઈ જાય મજૂરી કરાવવા. આરબો ઇન્ડિયનો ને મજૂરી કરાવવા લઈ જાય. અને એ કે છે કે ઇન્ડિયન કોઈ દિવસ ત્યાંનો સિટીઝન ના બની શકે ગલ્ફ કન્ટ્રી નો, એ લોકો સિટીઝનશીપ આપતા જ નથી નોન આરબ ને, જે ત્યાંનો જન્મેલો આરબ હોય ત્યાંનો સિટીઝન. પછી એ છે કે કોઈ પણ બહારનો માણસ જે દેશમાં જન્મેલો ના હોય અને આરબ ના હોય એને આખા ગલ્ફ કોઈ પણ ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં એ ઘર ના ખરીદી શકે, ખાસ કરીને યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતમાં. એ ફક્ત રેન્ટ ઉપર તમે ઘર લઈ શકો 50 વર્ષ સુધી 100 વર્ષ સુધી. ત્યાં લોજ છે કે નોન આરબ ને સેલેબ નહીં કરવાની પ્રોપર્ટી.
મંદિર નથી, લોકો જે છાના છાના કરે
ઘર નહીં વેચવાનું જેટલા બહાર ના, એટલે અને એ લોકો વિસા આપે છે ફક્ત લેબર નો, કામ કરીને આવું જતા લોકો પોતાના દેશ. કેમ કે પછી અમેરિકાની જેમ બીજા દેશ ના લોકો અહીંયા કાયમ માટે રહી જાય તો પછી ઇસ્લામિક કન્ટ્રી ના રહે. આગળ બુદ્ધિ છે મુસલમાનોની પોતાના દેશને જે છે ચુસ્ત બનાવી રાખવા માટે, એ લોકો પ્રોપર્ટી કોઈને સેલ પણ નહીં કરે. એટલે જેટલા ઇન્ડિયાનો ત્યાં છે ત્યાં ઓલ લિવિંગ ઓન રેન્ટ, ધે ડોન્ટ હેવ એની ઓન પ્રોપર્ટી.
મમરા નો ડબ્બો
आदि पुरुष
हरे कृष्णा. हाँ मैं राधा कृष्ण दास हूँ प्रभु. धन्यवाद प्रणाम. मैं था श्रेष्ठ प्रभु के कार्यालय में. उन्होंने प्रसाद मुझे दिया था सेवन के लिए. मैं अपने गृह पर हूँ ना. मैंने आपको ढूंढने का अनुसंधान किया था, प्रयत्न किया, परंतु आप कहीं मिले नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ तो आप अपना आदेश जो है इस दास को दीजिए. किस विषय पर? कौन सा वक्तव्य? आज का वक्तव्य ना, कोई त्रुटि हो तो आप बताइए. हाँ. जिज्ञासा थी. ठीक है ठीक है. मैं कल आऊंगा ना, तो कल बैठ लेंगे. ठीक है प्रभु. और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो तुरंत बता देना. अच्छा नहीं, मैंने देखिए मैंने प्रयत्न किया कि श्लोक के ऊपर ही अधिक बोला जाए. हाँ अच्छा अच्छा ओके ओके ओके. हाँ 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 ओके. एक्चुअली क्या ना, मुझे रामलीला के ऊपर तो बहुत बोलने की इच्छा थी. बहुत अनेक पुराणों के श्लोक है मेरे पास, लेकिन फिर श्लोक के ऊपर मैंने सोचा मैं पहले बोल दूं, फिर समय होगा तो बोलूंगा, लेकिन समय मिला नहीं. तो फिर क्योंकि अच्छा अच्छा ये बात है. ओके ओके ओके. तो हाँ हाँ आस्वादन करेंगे. तो प्रभु एक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राम उत्तर तापनी उपनिषद है वेद में, उसमें भी भगवान राम के जो है उनका जो तत्व है, उनका जो रहस्य है, उसके विषय में बहुत कुछ लिखा है. मेरे पास है. ठीक है ठीक है. तो कल ही आऊं फिर? अच्छा ठीक है. हरे कृष्णा. आज शाम को कितने बजे? नहीं आप अपना समय बताइए. ओके तो 5 से 7 दो घंटे. ठीक है, मैं आने से पहले आपको दूरभाष से संपर्क कर लूंगा. अच्छा फिर मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूं. हरे कृष्ण. जाओ मां.
મટકું મારી લેવું તું પછી રાખી
મેં જાય છે.
दुबई પણ એ કહે છે રીચ લોકો ની ત્યાં કોઈ પ્રોપર્ટી નહીં, પછી કાયદો છે લોન આરામ ના ખરીદી શકે ક્યાંય નહીં. તમારા
રાખી છે, એમાં કે છે કે
નોકરી કરે અને પછી સાંજ ના આવે
કોમ્પ્યુટર આપી જા એટલે હવે મને ખબર પડી આ હિસ્ટ્રીમાં આવ્યું છે અમેરિકામાં અમેરિકામાં હું હિસ્ટ્રી બુક વાંચતો હતો એમાં શું લખ્યું હતું કે આજથી 300-400 વર્ષ પહેલા આજે આરબ લોકો છે એ કારણ કે અરે આજે આફ્રિકા છે અરેબિયાથી બહુ પાસે છે મિડલ ઇસ્ટ થી ગલ્ફ થી બહુ પાસે છે અડીને જ છે બાજુ બાજુમાં છે તો આજથી 300-400 વર્ષ પહેલા જે આરબ લોકો છે ને એ આ કાળિયા લોકોને મારી મારીને ના બેડીઓ પહેરાવી દેતા હતા હા મારી મારી લોકોને બેડીઓ પહેરાવી દે પગ અને હાથમાં અને પછી જે બ્રિટન છે ને બ્રિટન યુરોપિયન્સ એ લોકોને સ્લેવ તરીકે આ લોકો વેચી દે આરબો
પૈસા મળે
અને બ્રિટિશ લોકો આ કાળિયાઓને સ્લેવ તરીકે લઈ જાય યુરોપમાં અને પછી એ લોકોને અમેરિકા લઈ ગયા પણ એ લોકોને આટલા બધા જે માર પડ્યા છે એ સારું જ છે ને કારણ કે એ લોકો સારા લોકો તો છે નહીં એ લોકોને જે આટલા બધા ચાખા પડતા હતા માર પડતો હતો કાળિયાઓને ગુલામી એ સારું જ છે ને કારણ કે એ લોકો ગંદા લોકો છે ઇવન અત્યારે અમેરિકામાં તમે જુઓ ચોરીઓ અને લૂંટફાટ એ લોકો જ કરે છે
આપણે હમણાં કોઈ આપણું ન્યુયોર્કમાં મંદિર છે ત્યાં પિતા ગયા હતા કે છે હું બિચારો મને માર મૂકવાય એટલે એનું કમ્પ્યુટર બહુ સુંદર જતું
કાઢ્યો
એ લોકોને છે ને બ્લડમાં હોય બિઝનેસ બ્લડમાં હોય ને તો આ લોકોને ચોરી બ્લડમાં પછી ડોક્ટર ભલે થાય પણ એ ડોક્ટર ચોર બને બધાને બાંધી દે ઘરમાં અને પછી પ્રાર્થના કરો અને એક સાથે એક ના બેઠે કાઢ્યો અને લોકોના હોઠ ને કેટલા રાક્ષસી જેવા હોય છે દેખાવામાં અને રાવણ વિશે આવું તો પહેલી વાર મેં વાંચ્યું બ્રાહ્મણી વાળી આપડે આખું પેલું ભાગવત વાંચતી નહીં ને આજે રાક્ષસોની વિસ્તાર દુર્ગંધ વાળી દેવી રામ એમનો પાર્સદ છે છતાંય
કારણ કે લોક આ જે લીલા છે લોક શિક્ષા માટે
લોક શિક્ષા માટે પહેલો પ્રશ્ન કઈ એને માઇક આપવું જોઈએ તું આ વખતે
આજે સારી હતી પણ લાગે છે રામનવમી આવી છે ને એ લોકો કદાચ ફંક્શન વખતે થોડું સારું માઇક રાખતા હશે ખબર નહીં મને આ લોકોને કઈ ખબર પડતી નહીં અમુક વાર તો માઇક એકદમ ચહેરી જાય છે અવાજ ફાટી ગયેલો ને
એ લાગે કે બહુ ગંદાનું માહિત છે. માં અને ટ્રાન્સફર કરવા માટે વાયર આપજો, અત્યારે જ લેક્ચર નાખી દઉં છું. કયો પાઉચ? આમાં છે. આમાં કઈ નથી યાર, તું અહીંયા આવ.
એક
મહિના નું ઇન્કમિંગ બી નહીં આવવા
દેવા, પછી આપી
આવીશું ભરતપુર ગેટ પર. એ ક્યાં
આવ્યું? હમણાં ગયા હતા આપણે એ કે ડી ગેટ ને બધું પાસે જ છે.
આપણે કેટલી ભૂલ કરી, ત્યારે જ આપણે એડ્રેસ લઈ લેવા.